Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita, Chapter 9, Verse Number 12 and 13. इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मायं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपीश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानो सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद् गीता मात की जय हो। अध्याय 9, श्लोक नंबर 12 एंड 13। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए इन अत्यंत ही सुंदर शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, मोघाशा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। मोघाशा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। शब्दार्थ मोघ आशा। मोघ का मतलब होता है निष्फल हो जाता है, उसकी आशा निष्फल हो जाती है। मोघ कर्माणु, उसके सारे कर्म जो सकाम कर्म उसने किए हैं वो भी निष्फल हो जाते हैं। मोग ज्ञाना, उसने जो ज्ञान अर्जित किया है वो सब भी विफल हो जाता है। और विचित दशा मतलब मोहग्रस्त हो जाता है। उसके साथ आसुरीम राक्षसीम आसुरीम चैव, राक्षसी और असुरी निश्चय ही प्रकृतिम, प्रकृति मतलब स्वभाव को, वो राक्षसी और आसुरी स्वभाव को धारण करता है। मोहिनीम श्रिता, और मेरी मोहने वाली शक्ति अर्थात माया से वो मोहग्रस्त हो जाता है। अनुवाद, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल अर्थात भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंततो गत्वा इस भवबंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं होते, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। दूसरे शब्दों में जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए, जैसा कि सातवें अध्याय में बताया जा चुका है। ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाते। अतः परम सत्य तक पहुंचने के अनेक मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान है। ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो यह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है और जो ही व्यक्ति मुक्त हो जाएगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कृष्ण से समता का यह प्रयास ब्रह्म के कारण निष्फल हो जाता है। इस प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है, यही इस श्लोक का संकेत है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों जैसे वैदिक वाङ्मय के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल रहता है। यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी बहुत ही खास बात बताते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो बहुत बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान ब्रह्म ज्ञान तक उनको प्राप्त हो जाता है। वो क्या सोचते हैं कि अभी मैं इस भौतिक जगत में, इस भौतिक शरीर मैंने प्राप्त किया है और जब मैं भगवान के पास चला जाऊंगा मुक्तावस्था में क्या होगा, मैं और भगवान एक हो जाएंगे। भगवान कृष्ण को नहीं जानते, ब्रह्म ज्ञान को तो जान लेते हैं पर भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। तो भगवान ने कहा ऐसे लोगों ने जितना भी ज्ञान अर्जित किया है और मुक्ति की जो इच्छा है, वास्तव में मुक्ति ही तो अन्यथा रूपे स्वरूपण व्यवस्थिता, आपका स्वरूप ये होना चाहिए कि आपका स्वरूप क्या है, जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, आपको नित्यदासता में जाना चाहिए। लेकिन यदि आप भगवान से मिलकर भगवान बनना चाहते हो तो ये मुक्ति नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर बताया श्री प्रभुपाद ने कि इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान है। फिर वो ऐसे लगाते हैं, फिर ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो यह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है, जो ही व्यक्ति मुक्त हो जाएगा तो उसमें ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, वो भी भगवान बन जाएगा। कृष्ण से इस समता का यह प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। फिर उसको ये भ्रम हो जाता है कि मैं भगवान बन जाऊंगा, तो ये प्रयास कभी भी पूरा उसका होगा नहीं, क्योंकि भगवान के साथ मिल नहीं सकते, भगवान की सेवा कर सकते हैं। इस प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कोई फायदा नहीं है ऐसे ज्ञान का, ये सदैव निष्फल होगा। और वास्तव में भगवान इसी बात को यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे हैं, मोघाशा मोघ कर्माणु मोघ ज्ञान विचेतसा राक्षसी आसुरीम चैव प्रकृति। तो यहाँ पर श्री रूपा जी कहते हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों जैसे वैदिक वांग्मय के ज्ञान का अनुष्ठन सदा, भले उसने वेदांत सूत्र पढ़ लिया हो, वो सारे उपनिषद पढ़ लिए हो, सारे ज्ञान उसको पता चल गए हो, लेकिन यदि वो भगवान को नहीं मानता है, भगवान के स्वरूप को नहीं मानता है, तो फिर सब कुछ निष्फल। इसलिए श्री रूपा जी बहुत ही खास बात बता रहे हैं, अतः भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो ऐसा करते हैं वे निश्चय रूप से मोहग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। बृहद विष्णु स्मृति का कथन है, यो वेति भौतिकं देवं देहं कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वस्मात् बहिष्कार्य शौतस्मार्विधानतः मुखं तस्यावलोक्यापि सचेलं सन्नामाचरेत्। यहाँ पर ये बता रहे यो वेति भौतिकं देहं कृष्णस्य परमात्मनः, जो ये सोच रहा है कि भगवान का जो देह है भौतिक है, वो शरीर भौतिक मानता है, सर्वस्मात् बहिष्कार्य, उसे श्रुति तथा स्मृति समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देते हैं, उसको हर जगह पे श्रोतस्मार्थ विधानतः श्रुति स्मृति में उसको हर अनुष्ठान से वंचित कर दिया जाता है। किसको? योवेति भौतिकम देहम कृष्ण से परमात्मा, जो ये सोचता है कि भगवान श्री कृष्ण का देह जो है वो भौतिक है, उसको श्रुति स्मृति जो है वो समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देता है। और आगे तो यहाँ तक कह दिया, मुखम तस्या अवलोक्यापि, यदि कोई भूल से उस चांडाल का मुख भी देख ले, किसको? किसका मुख? जो वेति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मा, जो ये सोचता है कि भगवान श्री कृष्ण का देह भौतिक है, यदि कोई भूल से उसका मुंह देख लेता है तो उसे क्या करना चाहिए? सचेलम स्नानम आचरेत, तो उसे सचेलम तुरंत ही गंगा में स्नान करना चाहिए, जिससे उसका छूत दूर हो सके, क्योंकि उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। उससे बड़ा अपराध कोई है ही नहीं कि हम भगवान को भौतिक माने, भगवान के शरीर को भौतिक माने, भगवान का उपहास करें। तो यहाँ पर कहते हैं श्री प्रभुपाद जी कि लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा असुर योनियों में रह पाना ही लिखा है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी हमें ये बता रहे हैं कि जो भगवान के शरीर को भौतिक मानता है वो कितना बड़ा गुनाहगार है, कितना बड़ा पापी है, उसको कितनी सजा मिलेगी, वो तो बाद की बात है। लेकिन श्रुति और स्मृति ने उनको बिल्कुल बहिष्कृत कर दिया है, और वो उसको जो अपराध का दंड मिलेगा वो तो एक साइड में रखो, उसके अपराध की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वेदों और शास्त्रों ने उसको बिल्कुल बहिष्कृत कर दिया। भगवान ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात कही है, ये साक्षात भगवान के शब्द हैं, हमें इन पर पूरा का पूरा विश्वास रखना चाहिए। भगवान कहते हैं मोघाशा मोघ कर्माणु, उनकी आशा मुक्ति की आशा, उनके सत्काम कर्म और उनका ज्ञान, वो सब निष्फल हो जाएगा। अभी किसका ज्ञान? यहाँ पर जो ये वाला जो श्लोक है वो पिछले वाले श्लोक से कनेक्टेड है। श्लोक नंबर 11 याद है ना, जो हमने कर पढ़ा था, उसमें भगवान ने कहा अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। अवजानन्ति का मतलब होता है, भगवान कह रहे हैं जब मैं मनुष्य देह में अवतरित होता हूँ तो लोग मेरा उपहास करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। और भगवान कहते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो मेरी वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते कि मैं सारे जीवों का महेश्वर हूँ। और वो नहीं जानते हैं तो मजाक उड़ाते हैं, फिर उनका उनके साथ क्या होता है। यहाँ पर कोई लोग बिल्कुल भगवान के स्वरूप को नहीं मानते हैं और इसको अपराध भी नहीं मानते, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो भाई कहते हैं हम कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, और कृष्ण तो कैसे भगवान हो सकता है, उसने ऐसा किया उसने ऐसा किया, गलत गलत बातें कृष्ण के विषय में करते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि देखो, जो ऐसा मानता है कि मैं साधारण हूँ, मेरा जो स्वरूप है वो साधारण है, जो मेरा उपहास करता है, वो उसके साथ क्या होगा। कुछ लोग बोलेंगे कि कृष्ण ने ऐसा कह दिया क्योंकि कृष्ण चाहता है कि सब मेरी भक्ति करें, सब मेरी पूजा करें, और इसीलिए वो ये कहना चाहता है कि अगर मेरी भक्ति नहीं करोगे तो ये तुम्हारा हाल हो जाएगा, मोग आशा मोग कर्माणु मोग ज्ञान विचित। लेकिन इसलिए नहीं, कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसकी भक्ति करता है या नहीं करता है। जैसे सूर्य, हम देखते हैं जो उल्लू होता है ना, वो रात को जागता है और दिन को सो रहा होता है। अब दिन को जब वो सो रहा होता है तब सूर्य उदय होता है, लेकिन उल्लू क्योंकि दिन को सो रहा होता है तो सूर्य को देखता नहीं है, और रात को जाग के वो कहता है सूर्य नाम की कोई वस्तु नहीं है, सूर्य तो केवल ब्रह्म है, सूर्य तो होता ही नहीं है, अगर होता तो हमें दिखता, हम सूर्य को नहीं मानते। एक उल्लू इस तरह से भाषण दे और बाकी सारे उल्लू बैठ कर ताली पीटेंगे, वाह वाह क्या तुमने सिद्धांत दिया, सूर्य नाम की कोई वस्तु नहीं है, केवल एक ब्रह्म है। तो अगर वो रात को जागता है और पूरा दिन सोता रहता है और उसे सूर्य पर विश्वास नहीं है, उससे सूर्य को कोई फर्क पड़ता है? सूर्य क्या सोचेगा कि अरे अरे ये उल्लू तो मेरी सत्ता को नहीं मान रहे हैं, मेरे होने को नकार रहे हैं, मेरे अस्तित्व को नहीं मान रहे हैं, अभी मैं एक दिन रात को निकलूंगा ताकि ये सब उल्लू जो हैं वो मुझे देखें और मेरी सत्ता पर विश्वास करें। क्या कभी ऐसा सोचेगा सूर्य? सूर्य को कोई फर्क पड़ता है कि 10 20 50 100 उल्लू जो हैं वो मिलकर उसको बहिष्कार करते हैं या उसको उसका उपहास करते हैं? सूर्य की जो चमक है, सूर्य का जो तेज है, क्या उससे वो कम पड़ जाएगा? नहीं, सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्लू यदि नहीं मान रहा है तो ये उसकी अपनी गलती है, लेकिन वो तो उल्लू है, वो सूर्य को नहीं मान रहा, और ये मूढ़ है। भगवान ने कहा नमाम अवजानंति माम मूढ़ा। मूढ़ का मतलब जानते हैं क्या है? जैसे 100 अगर बेवकूफ मिलते हैं तो एक मूर्ख बनता है, 100 मूर्ख मिलते हैं तो एक पागल बनता है, और 100 पागल मिलकर एक मूढ़ बनता है। मूढ़ का मतलब होता है जो भगवान को नहीं मानता है, जो शास्त्र को नहीं मानता है, जो कृष्ण के स्वरूप को नहीं मानता है, जो कृष्ण की शरण में नहीं आता है। और उसका क्या होता है? ठीक है, कोई बोलेगा अच्छा ठीक है, भगवद गीता में कह दिया कि जो मुझे नहीं मानते वो मूढ़ है, तो क्या फर्क पड़ता है? तो क्या फर्क पड़ता है उसको आज भगवान बता रहे हैं कि वो जो मेरे स्वरूप को नहीं मानते हैं, मोघ आशा मोघ कर्माणु, उसकी सारी मुक्ति की आशाएं समाप्त हो जाएंगी। वो मुक्त नहीं हो सकता आप, जब तक आप भगवान की शरण में नहीं आते हो, जब तक आप भगवान के को प्रणाम नहीं करते हो, जब तक भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं मानते हो, तब तक आपकी मुक्ति की आशा जो है वो निष्फल हो जाएगी। मोघ कर्माणु, अपने जितने भी कर्म कांड में जो भी कार्य किए, अब यहाँ पर चक्रवर्ती पाद बताते हैं, यहाँ पर तीन प्रकार के जो हमारे कार्य हैं उन सबको निष्फल बताया भगवान ने। ये भगवान के शब्द हैं। 3 नंबर श्लोक में भगवान ने पहले ही बोल दिया अशुद्ध धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानि। अगर मेरे इस ज्ञान को जो मैं बता रहा हूँ उस पर तुम्हें श्रद्धा नहीं होगी तो फिर तुम मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकोगे और बारम्बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते रहोगे। इसलिए एक एक शब्द पर हमें हृदय से विश्वास रखना है कि भगवान कह रहे हैं, और भगवान जो कहते हैं वो 100% सत्य होता है। भगवान यहाँ पर चक्रवर्ती पाद बताते हैं कि 3 प्रकार के मोघ आशा आशा का मतलब होता है भक्ति में, हम भक्तिमय कार्य से कोई भी आशा करके कोई कार्य करते हैं इच्छा करके, वो भी निष्फल हो जाता है। मोघ कर्माणु, कर्माणु का मतलब होता है कर्म कांड, यदि कोई कर्म कांड कर रहा है तो वो भी निष्फल हो जाता है। और मोघ ज्ञान अर्थात जो ज्ञान कर ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञान में कार्य करते हैं या ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो भी निष्फल। यानी भक्ति भी उसकी, अगर वो भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं मानता है, उसकी भक्ति निष्फल हो जाएगी, उसके सब काम कर्म निष्फल हो जाएंगे, उसके द्वारा अर्जित ज्ञान भी निष्फल हो जाएगा। क्यों निष्फल हो जाएंगे? क्योंकि ये लोग भगवान के स्वरूप को, भगवान जब इस भौतिक जगत में मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं, उसको गलत समझते हैं और उसका उपहास करते हैं, तो इन सब का विनाश हो जाएगा। चाहे वो भक्ति योगी हो, चाहे वो कर्म योगी हो, चाहे ज्ञान योगी हो, अगर भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं मानते, अगर कृष्ण के वास्तविक रूप को नहीं मानते, तो उनका सर्वनाश हो जाएगा। जो भगवान को पूरा गलत समझते हैं, उनकी प्रकृति, उनका स्वभाव कैसा हो जाता है? भगवान कहते हैं, राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रुता। राक्षसीम आसुरीम, वो राक्षसी और आसुरी स्वभाव को प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर यह प्रश्न होता है, राक्षसी और आसुरी भगवान ने क्यों लिखा है? ये कैसा स्वभाव होता है? ये ऐसा स्वभाव होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं, जितने भी राक्षस थे, चाहे वो हिरण्याक्ष हो, हिरण्यकशिपु हो, रावण हो, कंस हो, उन सब की क्या इच्छा थी? वो सब ये चाहते थे कि हम भगवान का वध कर दें, है ना? सबकी यही इच्छा थी कि किसी तरह से हम कृष्ण का वध कर दें। हम देखते हैं कृष्ण छोटे से हैं, गोकुल में मजा कर रहे हैं, किसी को कोई हानि तो नहीं पहुंचा रहे कंस को, वो आराम से अपने ब्रज गोकुल में आनंद से जी रहे हैं, सब उनसे इतना प्यार करते हैं, लेकिन वो भी 6 दिन के हैं और बहुत बड़ी विशाल राक्षसी को उसके पास भेजा गया। अभी पूतना का वध हो गया, अब कृष्ण के पास आए हैं, तो कैसे वध हुआ वो तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसका वध हो गया, उसके बाद तृणावत आ गया, उसके बाद अघासुर आ गया, उसके बाद बकासुर आ गया, उसके बाद प्रणासुर, लंबासुर आ गया, कभी वत्सासुर आ गया, इतने सारे राक्षस बार 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 भगवान पर आक्रमण करने के लिए कंस भेज रहे थे। कंस क्यों भेज रहे थे? क्योंकि वो कृष्ण के स्वरूप को नहीं मानते थे, वो सोच रहा था कि मैं कृष्ण को मार डालूं और मैं आनंदित हो जाऊं। आज का जीव भी भले ही वो छोटे छोटे लेवल का होता है, लेकिन होता तो वही कंस है, वो कृष्ण को मार डालना चाहता है, कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को मार डालना चाहता है, क्योंकि अगर वो कृष्ण के स्वरूप को एक्सेप्ट करेगा तो उसे दूसरी बात भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्या कि मुझे कृष्ण का दास बनना पड़ेगा। लेकिन वो कृष्ण का दास बनना नहीं चाहता है, वो स्वयं प्रभु बनना चाहता है, प्रभुत्व जताना चाहता है, वो जो चाहता है कि यदि कृष्ण की सत्ता को मान लिया तो मुझे कृष्ण के अंडर में रहकर कार्य करना पड़ेगा, लेकिन मैं स्वयं प्रभुत्व जताना चाहता हूँ, मैं स्वयं आनंद प्राप्त करना चाहता हूँ। इसलिए वो कहता है कि कृष्ण नहीं है, कृष्ण भगवान हो ही नहीं सकते, कृष्ण के स्वरूप को नकारता है। इसे भगवान कहते हैं राक्षसीम आसुरीम चैव, वो राक्षसी स्वभाव वाला हो जाता है। जिस प्रकार राक्षस का और कोई दूसरा परिचय नहीं है, पहले भी हमने पढ़ा 7.15 में भगवान ने कहा, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। राक्षसी नामाम दुष्कृति नो मूढ़, मतलब जो मूढ़ होते हैं, जो बेवकूफ होते हैं, भौतिक दृष्टि से वो भले बहुत ज्यादा ज्ञानी हो, लेकिन वो दुष्कृति होते हैं, उनके कार्य दुष्टों जैसे होते हैं, राक्षसों जैसे होते हैं, दुष्कृति होते हैं, इसलिए वो नामाम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। उनको पहचानना हो तो उनकी एक ही क्वालिटी है, उनके अंदर यही बात है कि वो मेरा प्रत्यध्यंत नहीं करते, मेरी शरण में नहीं आते। तो भौतिक लिहाज से भले ही कितने सोफिस्टिकेटेड दिख रहे हों, सूट बूट पहन कर आए हों, लेकिन उनको समझ लेना वो क्या है। भगवान ने अपने शब्दों में कहा नराधमा, अधम कहते हैं बहुत ही घटिया, नरमना इंसान, वो बहुत ही घटिया इंसान है। मनुष्यों में अधम है। आपके आजू बाजू में देखिए कहीं पर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम नहीं करता, उनकी शरण में नहीं आता, तो भगवान ने कह दिया कि वो नराधम है। हम लोग क्या कहते हैं पता है? यहाँ पर मुझे अक्सर सुनने को मिलता है कि देखो वो लोग कितने मतलब ज्यादा एजुकेटेड हैं, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हैं, कितने ज्ञानी हैं, वो सब कृष्ण को नहीं मानते हैं। लेकिन आप लोग पागल हो, सारा दिन हरे कृष्ण करते रहते हो, आप समझते हो आप उनसे ज्यादा ज्ञानी हो। हम नहीं समझते, भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि वो मूढ़ हैं। आप कह रहे हो वो कोई ज्ञानी है, परंतु भगवान कह रहे हैं कि वो तो मूढ़ हैं, बेवकूफों में सबसे गिरे हुए बेवकूफ हैं, और वो मनुष्यों में सबसे गिरे हुए मनुष्य हैं जो कि मेरी शरण में नहीं आते। क्यों नहीं आ रहे हैं? माया अपहृत ज्ञान, माया ने उनका ज्ञान को हरण कर दिया, किडनैप हो गया उनका ज्ञान, अब उनके पास ज्ञान नहीं रहा, अब तो केवल ज्ञान का एक भ्रम रह गया उनके पास। और इसलिए आसुरम भावम आश्रिता, वो असुरी कार्य करना शुरू कर देते। आसुरी कार्य क्या है? भगवान की शरण में ना जाना सबसे बड़ा आसुरी कार्य है। आसुरों को देखिए आप, जितने भी राक्षस और आसुर हैं, उनका काम एक ही है, भगवान का भगवान के अस्तित्व को झुठलाना और भगवान की शरण में ना जाना। आप जितनी भी पिछले जितनी भी वीडियोज है ना, जो ये देवताओं वाली, असुरों वाली, और जितने भी रामायण, महाभारत, भागवतम, जितने भी विष्णु पुराण सब देखिए, उसमें से असुर जो होगा ना वो यही काम करेगा, भगवान को प्रणाम नहीं करेगा, भगवान की शरण में नहीं जाएगा, और भगवान को, भगवान की सत्ता को नहीं मानेगा, है ना। वो कौन होगा? असुर होगा, भले वो कैसा भी स्वरूप धारण कर दे। इसीलिए तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वे भगवान श्री कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते हैं। भले ही वो देखने में तिलक लगा के आ जाएं, कंठी पहन के आ जाएं, और आपको लगे ये तो कितने बड़े साधु महात्मा हैं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है, बड़े बड़े साधु महात्मा लगते हैं, लेकिन यदि वो हृदय से भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, अपने आप को भगवान का दास नहीं मानते हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी ने लिख कर दे दिया कि ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल भगवत नाम गमन प्राप्त नहीं होगा। जब तक आप भगवान श्री कृष्ण की शरण में नहीं चले जाते, जब तक भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जब तक भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को नहीं मानते, तब तक आप भगवान के धाम में नहीं जा सकते। भगवान ने कह दिया कि अंतकाले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवम्। अंत समय में यदि सिर्फ मुझे याद करते हुए आपने अपने इस देह को त्यागा, तभी आप मुझे प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं, भगवान के पास इतनी कृपा है कि वो उन्हें अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है, आप मुझे भगवान स्वीकार नहीं करना चाहते हो, तो भले ठीक है, मैं आपको एक साथ एक वे प्रदान कर देता हूँ। ठीक है, असुर बन जाओ, आप असुर बन जाओ, आप असुर, यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं, आसुरीम राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रुता। वे आसुरी और नास्तिक विचारों के प्रति आकर्षित होते हैं। नास्तिक विचार क्या है? जैसे एथीस्ट होते हैं ना, वो भगवान को नहीं मानते। वास्तव में ये एथीस्ट जो है वो अपनी मर्जी से नहीं बनते हैं, अपनी उन्होंने इच्छा की और भगवान ने उनको एथिस्ट बना दिया कि ठीक है तुम असुरों की तरह जीना चाहते हो तो ठीक है। तो एथिस्ट का मतलब ही राक्षस है। यहाँ पर भगवान ने नास्तिक और राक्षस एक साथ लिखा, राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रुता, क्योंकि वो मोहग्रस्त होना चाहते हैं। आज यदि कोई कहता है कि मुझे भगवान दिखता नहीं है तो मैं भगवान को कैसे मानूं, तो इसको यही कहना चाहिए, क्या तुम वाकई में भगवान को मानना चाहते हो और देखना चाहते हो भगवान को? तो आपको जरूरी नहीं भगवान इस भौतिक दृष्टि से दिखे, भगवान शास्त्र चक्षु से दिखते हैं, भगवान गुरु महाराज जो ज्ञान का अंजन लगाते हैं ना नेत्रों पर, उनके द्वारा दिखते हैं भगवान को इन भौतिक। भगवान ने तो भगवद गीता में कह दिया अर्जुन को कि अर्जुन तो इन भौतिक नेत्रों से मुझे नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। और जब गुरु महाराज दिव्य दृष्टि देते हैं ना, तब कहीं जाके भगवान का दर्शन होता है। लेकिन वो क्या कहते हैं, हमें दिखते नहीं तो हम लोग भगवान को माने कैसे। तुम भगवान को इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि तुम भगवान को देखना चाहते नहीं हो, और तुम भगवान को देखना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि तुम भगवान को मानना नहीं चाहते हो। वरना तो वो तरीका अपनाना चाहिए ना जिसके द्वारा हम भगवान को जान सकें, भगवान को प्रेम कर सकें, भगवान को समझ सकें। और वो तरीका क्या है, भगवान ने कहा तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः। किसी तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ। और आज अगर हम किसी से सीखने के लिए भी जाते हैं ना, किसी से पूछने के लिए भी जाते हैं ना, तो भी चैलेंजिंग मोड में क्वेश्चंस करते हैं, ये भगवान कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, क्या इसने ऐसे कैसे किया। ये नहीं, भगवान कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपात है ना, सबसे पहले उसको प्रणिपात करो जिससे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, जो आपको भगवान के विषय में बता रहा है वो गुरु महाराज कितना महान है, जो आपको भगवान से मिला रहा है उसका कितना आदर करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में करते हैं तो भी चैलेंजिंग मोड में कि मुझे ऐसा पता है, मैंने ये सुना है, वहां से मैंने ये सुना। अरे छोड़ो तुमने क्या सुना है, शास्त्र की बात करो, जो शास्त्र में लिखा हुआ है ना वही सत्य है, उसी के अनुसार आपको समझना है। आज तक हमने जितना भी ज्ञान प्राप्त किया है ना, भौतिक ज्ञान जितना भी प्राप्त किया है, वो या तो कहीं से थोड़ा ले लिया, कहीं से थोड़ा ले लिया, कहीं से क्रमबद्ध से, या ये जो भौतिक नॉलेज है ना वो भी हम लाइन से सीखते हैं ना, क्रम से, तब कहीं जाकर हमारी बुद्धि में कोई बात आती है। परंतु भगवद गीता को हमने कभी इम्पोर्टेंस दी नहीं, कभी किसी से कुछ सुन लिया, कभी किसी से कुछ सुन लिया, कभी किसी से कुछ सुन लिया, और हम सोचते कि हमें भगवद गीता समझ में आ गई। अभी भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मैं परब्रह्म हूँ, अर्जुन ने कह दिया कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम। अर्जुन ने भगवान को परब्रह्म घोषित कर दिया, अर्जुन ने भगवान के स्वरूप को परब्रह्म, भगवान का जो ये भौतिक शरीर, जो भौतिक नहीं है, जो इस भौतिक जगत में जो भगवान का स्वरूप है, उसी को अर्जुन ने परब्रह्म स्वीकार किया। तो हमें भी इसी तरह से शुद्ध भक्तों के, शुद्ध वैष्णवों के पद चिन्हों पर चलकर भगवान के स्वरूप को स्वीकार करना है। और अगर हम भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, उनका उपहास करते हैं कोई भी जीव, तो भगवान बता रहे हैं आज के श्लोक में, मोह आशा मोह कर्माणु मोह ज्ञान विचेतसा, उसकी आशा, उसके कर्म, सकाम कर्मों के फल और उसके ज्ञान सभी कुछ निष्फल हो जाएगा। वो सदैव के लिए राक्षसी और आसुरी स्वभावों की तरफ आकर्षित होते रहेंगे और सदैव मोहग्रस्त रहेंगे, कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकेंगे, भगवत धाम को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर बात बताई है बृहद विष्णु स्मृति में, जो कथन है कि जो भगवान की देह को साधारण मानता है, जो कृष्ण की देह को साधारण मानता है, उसका उपहास करता है, तो श्रुति स्मृति उसका बहिष्कार कर देते हैं, उसको कहीं जगह नहीं मिलती, नरक में भी जगह नहीं मिलती ऐसे व्यक्ति को जो भगवान के स्वरूप को मना कर देता है, भगवान के वास्तविक स्वरूप से यदि वो ईर्ष्या करता है, उपहास करता है, तो उसको जो अपराध का दंड मिलेगा वो तो वो भुगतेगा। श्रुति स्मृति ने तो उसका बहिष्कार कर दिया, वरना जो छोटा मोटा अपराध होता है ना उसमें श्रुति स्मृति में उसके अपराध का दंड लिखा होता है, लेकिन उसका अपराध तो इतना बड़ा होता है कि श्रुति और स्मृति उसके विषय में बता नहीं सके, लेकिन उसका खाली जो मुख देख लेता है ना वो भी घोर अपराधी हो जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए, मुखम तस्यावलो क्यापि सचेलम स्नानम आचरित, उसे जाकर गंगा में स्नान करना चाहिए। और हमें यदि ऐसा हम लोग को करना पड़े तो मेरे ख्याल में सुबह से लेकर रात तक गंगा के किनारे से ही बार बार अब टिकट कटवानी चाहिए तक कटवानी पड़ेगी, क्योंकि हर क्षण एक ऐसे व्यक्ति से हमारा सामना होता है जो भगवान के शरीर का उपहास करते हैं, जो भगवान के शरीर को नहीं मानते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है नाम नो ही आवति शक्ति पापनर्हरणी हरि तावत् कर्तुम् न शक्तोऽपि पातकम् पातकी नरः। नामनो ही यावति शक्ति, जो भगवान का पवित्र नाम है उसके अंदर इतनी शक्ति है, पाप नरहरणे हरि, वो जीव के इतने अपराधों को हरण कर सकता है, इतने अपराधों को खत्म कर सकता है, यावत कर्तुम न कर्तोपि, जितने अपराध वो जीव कर भी नहीं सकता, मतलब जीव के सारे अपराध भगवान के पवित्र नाम से हरण हो जाते हैं। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किस किस का मुंह देखते हैं, हमें तो केवल प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए और भगवान के जो स्वरूप है उस पे अपना ध्यान टिकाना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहेगा। श्लोक नंबर 13 अब कर पढ़ेंगे। हरे मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा।